ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। आप समस्त श्रोता भक्तों के चरण कमल में प्रणाम करके मैं भगवान श्री राम की कीर्ति का वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूं, जिसका पहले से ही आचार्यों ने गान किया है। कोई नया शोध नहीं करना है। जो महामुनियों ने, भगवान के भक्तों ने भगवान की कीर्ति का गान किया है, उसी को अपनी भाषा में अपनी मति के अनुसार पेश किया जाता है। नई बात नहीं कही जाती है। बड़े बड़े तत्वज्ञों ने, जैसे महामुनि महान भक्त वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है, और आज से 500 वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान की कीर्ति का गान किया है, और वे कहते हैं कि मुनि न प्रथम हरि कीर्ति गाई तेहि मग चलत सुगम महि भाई। पहले के मुनियों ने, भक्तों ने भगवान श्री राम की कीर्ति का गान किया है, तेहि मग चलत सुगम महि भाई, हमें उसी रास्ते पर चलना सुगम होगा। जैसा उन्होंने गाया है उसी को मैं भाषाबद्ध कर, मैं इसको केवल भाषाबद्ध कर रहा हूं। उस समय अवध प्रदेश में वाराणसी से लेकर के कानपुर तक, समझिए मुख्य अयोध्या और लखनऊ पड़ता है, अवध प्रदेश कहते हैं, और वहां की जो बोलचाल की भाषा है उसको अवधी कहते हैं। अवध बहुत कुछ आशा की जाती है कि भगवान श्री राम अवधी बोले होंगे, चलिए जैसे चैतन्य महाप्रभु बंगला बोले थे और भगवान श्री कृष्ण ब्रज भाषा बोले, तो उसी अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने भगवान की कीर्ति का गान किया है। तो उदाहरण देते हैं कि अति अपार जे सरित बर जौ नृप सेत कराए हैं, चढ़ी पिपील कौ बिन सम, चढ़ी पिपील कौ परम लघु बिनुसन पा रहे जाए। जैसे राजा या सरकार किसी विशाल नदी पर पुल का निर्माण कर देता है, सेतु का निर्माण करता है, और मान लीजिए बरसात का दिन है, नदी में विशाल धारा बह रही है, उस सेतु का यदि आश्रय ले, उस परंपरा का आश्रय ले, तो एक पिपीलका भी, एक छोटा कीड़ा की चींटी भी चढ़कर पार हो जाएगी। भले भयंकर धारा है, लेकिन अगर कोई परंपरा में नहीं है, उस पुल पर नहीं चढ़ रहा है और तैरना चाहे, तो बड़े से बड़े गजराज भी धारा में बह जाएंगे, मर जाएंगे, नहीं पार हो सकते। और ठीक ठीक पुल का आश्रय लिया जाए, सेतु का, तो छोटे छोटे जीव भी पार। वैसे ही पहले के मुनियों ने जो भगवान का गान किया है, मैं उसी पथ पर चलूंगी। तो गोस्वामी जी के इस प्रतिज्ञा के अनुसार हम लोग भी उन्हीं के चरण चिन्ह पर चल करके भगवान के कीर्ति का कुछ वर्णन करके अपनी वाणी को सफल करते हैं। वास्तव में हम नया कुछ गुणगान नहीं कर सकते हैं, मुनियों के द्वारा किए गए शब्दों को दोहराते हैं, दिए गए शब्दों को दोहराते हैं, तो हमारी जीवा पवित्र होती है। ऐसा मैत्रेय जी विदुर से कहते हैं, विदुर भगवान की महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन फिर भी मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा और भगवान की महिमा गाऊंगा, ऐसे कहते हैं। तो हम लोग भी वही प्रयास कर रहे हैं भगवान के इस जन्म के महान पर्व पर और विशेषकर इस्कॉन जुहू के इस महान उत्सव में भगवान की गुण गाथा कहना और श्रवण करने, इसमें हम लोगों का महान सौभाग्य है। तो कल ये कथा हुई थी कि मनु महाराज भगवान से वर पाए और अंत में मनु महाराज ने भगवान से ये कहा, जब भगवान ने स्वीकार कर लिया कि मैं आपका पुत्र बनूंगा और मैं अपने अंशों के साथ अवतार लूंगा चार भाई के रूप में, वहां से चालू करते हैं। तो मनु महाराज मांगते हैं भगवान से, सुतबी से एक तव पदरति हो मोहिबर मूढ़ कहे किनको, आपके चरण कमल में हमारी मति कैसी हो सुत विषयक, मैं यही समझू कि आप मेरे पुत्र हैं। कभी मेरी भावना ये न हो कि अरे ये भगवान हैं बड़े हैं, जैसे किसी मायाबद्ध मनुष्य का प्रेम होता है अपने पुत्र में, उसी तरह से मेरा प्रेम होना चाहिए आपने पुत्र भाव से। तो भगवान ने कहा, कभी कभी तो देखा जाता है कुछ लोग पुत्र से प्रेम करते हैं लेकिन पुत्र के बिना ही जी लेते हैं, पुत्र को भेज देते हैं पढ़ने के लिए या कमाने के लिए और उसके बिना भी जीवित रहते हैं, उनको कोई खास प्रेम नहीं है। तब मनु महाराज कहते हैं, मनी बीनु फली जमी जल बीनु मीना, मनी बीनु फली जमी जल बीनु मीना, मम जीवन तिन तुम्हें अभिमा। जैसे मणि के बिना सांप नहीं जीवित रह सकता है और जल के बिना मत्स्य जीवित नहीं रह सकता है, उस तरह से मेरा जीवन आपके दर्शन के अधीन हो, आप मेरे साथ हो तो मैं जीऊं और नहीं तो मेरा शरीर न हो, इतना प्रेम होना चाहिए। वास्तव में इसी को भक्ति कहा गया है, यह वात्सल्य भक्ति। भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि हमारा प्रेम आपके पुत्र भाव से हो, भगवत भाव से नहीं, इतनी मेरी आसक्ति हो जैसे मणि के बिना सर्प नहीं जी सकता है, सर्प का जीवन मणि के अधीन बनता है, जब उसकी मणि हर ली जाती है तो वह सिर पीट पीट करके टोकरी पर और मर जाता है उसके बिना, और मत्स्य को मछली को यदि जल से बाहर किया जाए तो जल से बाहर जीने का कोई प्रश्न ही नहीं, जल से बाहर आते हैं उसे पटाने लगती है और अंत का मर जाए। तो जैसे सर्प का जीवन मणि के अधीन होता है और मछली का जीवन जल के अधीन होता है, ऐसे मेरा जीवन आपके प्रेम के अधीन हो, आपके अधीन हो, आपके बिना मेरा जीवन संभव न हो, ऐसा प्रेम होना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, असबर मांग चरण गही रहे एवं मस्त करुणा निधि। और ये वर मांग करके मनु महाराज भगवान के चरण को पकड़ लिए कि ऐसा वर दीजिए ऐसा वर दीजिए, तो भगवान ने कहा एवं अस्तु, एवं अस्तु यही हो, अर्थात यही होगा, ठीक है आपका हमारे प्रति ऐसा ही प्रेम रहेगा। अब तुम मम अनुशासन मानी बसम जाई सुरपति रज भानी, अब आप मेरी आज्ञा मानिए और इस पृथ्वी का त्याग करके आप सुरपति की राजधानी में रहिए, मतलब इंद्र की राजधानी में अमरावती में वास कीजिए और तह करी भोग विष छाय तात गए कछ काल पुनी हो यहू अवध बुआर तब मैं होगा तुम्हार सीता। स्वर्ग में बहुत काल तक विपुल भोगों के भोग करके आप कुछ काल तक वहां रहिए और इसके बाद आप अयोध्या के राजा बनेंगे अवध भूपाल भूवाल अवधि भूवाल में भूपाल आप अयोध्या के नरेश बनेंगे राजा बनेंगे तब मैं होगा तुम्हारे सुख तब मैं आपका सुख बनेंगे आपसे जन्म लेंगे। इच्छा मय नर देश समारे होई हूँ प्रकट निकेत तुम्हारे। मैं इच्छा में अपना चिन्मय से विग्रह मनुष्य के आकार में धारण करके और आपके घर में प्रकट होऊंगा होई हूँ प्रकट निकेत तुम्हारे आपके घर में जन्म लूंगा। क्या कोई मनुष्य ऐसा कर सकता है किसी को कह सकता है अच्छा ठीक है मैं आपके घर में जन्म लूंगा ले सकता है जन्म कैसे जन्म लिया है लिया जाता है इसको तो जानता ही नहीं कहां जन्म लेगा कैसे। अगर ऐसी स्वच्छंद इच्छा पूरी होती तो प्रत्येक आदमी बहुत बड़े धनी परिवार में पवित्र परिवार में जन्म ले लेता तुरंत लेकिन संभव नहीं। भगवान ने कहा कि आप पहले स्वर्ग जाइए और स्वर्ग में बहुत विपुल भोग भोग करके रहिए देवता बनकर और फिर वहां के बाद आपका जन्म अयोध्या में होगा तो अयोध्या के राजा होंगे तब मैं आपका पुत्र बनूंगा। अनशन सहित देह धरि पाता करी हूँ चरित भगत सुखदाता। मैं अपने अंशों के साथ जिनका नाम होगा भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये अंश हैं मैं अपने अंशों के साथ अपने शरीरग्रह प्रकट करूंगा और अनेक लीलाएं करूंगा जो भक्तों को बहुत सुख देंगे। कन्हौ चरित भगत सुखदाता भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा और भक्त के अलावा भी कोई भी मनुष्य इसको सुनेगा वो बहुत बड़ा भाग्यवान होगा। भगवान कहते हैं जे सुनि सादर नर बर भागी भव तरिहाई ममता मद त्यागी। मैं ऐसी लीलाएं करूंगा कि जिसको सुन करके मनुष्य बड़ भागी हो जाएंगे अथवा बड़े भाग्य वाले ही सुनेंगे सुनेंगे बड़भागी मनुष्य सुनेंगे। ये रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण भगवान की जो लीलाएं हैं उन्हीं लोगों को सुलभ है जिनका भाग्य बहुत बड़ा है कोई पुनीत कर्म पुण्य कर्म किया है पूर्व जन्म नहीं तो थर्ड क्लास के कचरा लेक्चर मिलते रहते हैं और भगवान की लीलाएं नहीं सुनने को मिलती। कई प्रकार के काव्य हैं संसार में कविताएं हैं पत्र पत्रिका हैं और मनुष्य उसको सुनता है पढ़ता है कौन पढ़ता है अल्प भागी इससे कर्म खोटा हुआ है पाप किया है पूर्व जन्म में इसीलिए उस पाप के कारण भगवान की लीला सुनने में रुचि नहीं। इसे भगवान कह रहे हैं जे सुनी सादर नर बर भागी भव तरिहि ममता मद त्यागी। भगवान श्री राम की लीलाएं ऐसी हैं कि इसको केवल सुना जाए तो मनुष्य का सांसारिक मद और ममता समाप्त। ये मद और ममता इस संसार बंधन के मूल कारण ममता शरीर को मैं मान करके यह मेरा है मेरा है मेरा है मेरी है ये है वो है इसी में रात दिन मनुष्य अपने जीवन को लगाया है यही बल संसार का बंधन है और मौत मध्य का अर्थ होता है अभिमान और इसका एक अर्थ होता है मदिरा, मध्य मध्य, मैं धनी हूं, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मैं बहुत बड़े पद पर हूं, नेता हूं, और इस कारण से व्यक्ति अपने को सुखी मानता है संसार में, जो कि वास्तव में वो दुख में है, घोर संकट में है, जन्म मृत्यु में है, लेकिन कुछ सांसारिक सफलता मिलने के कारण जिसमें धन मुख्य है, धन पद सुंदरता विद्या, इसके कारण वो मद में रहते हैं, बेहोश रहते हैं। जनार्दन प्रभु पार्टी के शिष्य देश में सादर नर पर भागी भव तरी ही ममता मल्त्यागी। भगवान अभी अवतार लेने के पहले ही कह रहे हैं कि मैं ऐसी लीला करूंगा जिसको बड़भागी मनुष्य सुनेंगे और सुन करके मद से मुक्त हो जाएंगे, भव से तर जाएंगे। भव मतलब जन्म मृत्यु के प्रवाह से पार हो जाएंगे। और क्या क्या त्यागेंगे? ममता और मद का त्याग कर, ममता मद त्याग। इस संसार में किसी भी कारण से अपने को धन्य समझना, सुखी समझना, यह बहुत भारी अज्ञान है। किसी भी कारण से धन विद्या बल स्वजन आदि का अभिमान, ये जो है मद भगवान की भक्ति नहीं करने देता है। और ममता, ममता ममत्व, यह मेरा है मेरा है मेरा है, इसलिए व्यक्ति भजन नहीं कर पाते। तो कोई शुभ कर्म कोई किया है, भगवान की भक्ति पहले किया है, तो वही व्यक्ति भगवान राम की लीला को सुनेगा, ये भगवान संकेत कर रहे हैं, और सुनेगा तो उसका जन्म मृत्यु का प्रवाह बंद हो जाएगा, भव सागर से तर जाएगा। इस प्रकार से भगवान कहे। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आदि शक्ति जे जग उपजाया सौ अवतर ही मोरी यह माया। और जो आदि शक्ति है मेरी प्रिया, मेरी माया मतलब मेरी पत्नी, ये पत्नी माया ही है वास्तव। भगवान अपने बाएं भाग में खड़ी हुई सीता को कहते हैं कि ये मेरी माया भी प्रकट होगी। तो माया से तात्पर्य है भगवान की शक्ति अद्भुत। सीता जी का एक अंश बहिरंगा शक्ति है जो जीवों को मोहने वाली है, उसका जो मोहनांश है सीता जी का, उसको माया शब्द से कहा गया। यह मेरी माया, योग माया कहे, भगवान के लिए शब्द है, मेरी स्वरूप शक्ति, मेरी आदि शक्ति या सीता भी अवतरित होगी। बाद में भगवान कहते पूर्व मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पर सत्य हमारा, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। यह बिल्कुल सत्य है, सत्य है, सत्य, तीन बार बोल रहे, बिल्कुल सत्य बोल रहे। पुण्य पुण्य सक ही कृपा निधाना, अंतर धाम भय भगवान। बार बार ऐसा कह करके कि बिल्कुल सत्य है, मैं अवतार लूंगा, आपका पुत्र बनूंगा, यह कह करके वहीं पर फिर अंतर्लिप्त हो गए, जैसे प्रकट हुए थे वैसे अंतर्लिप्त। दंपति उर धरि भगत कृपाला, ते आश्रम निवस कर चुकाला। दोनों दंपति पति पत्नी भगवान को अपने हृदय में धर लिए, आंख से देखे थे, अब वही रूप मन में छा गया, हृदय में बस गया। तो भगवान को अपने हृदय में धारण करके अर्थात निरंतर चिंतन करते हुए उसी आश्रम में कुछ काल तक रहे। वो आश्रम नैमिषारण्य में था। समय पाई तन तजिया नयाशा, जाई की अमरावती वासा। और कुछ समय के बाद, समय आने पर अनायास ही शरीर छोड़ दिए। शरीर छोड़ने में कोई कठिनाई नहीं हुई, शरीर छोड़ करके और जाकर स्वर्ग में गए, दूसरे शरीर से, देव शरीर से। यहां तक कथा पहुंचे कि महाराज दशरथ के रूप में मनु महाराज जन्म लेंगे। तो अब इसके बाद मैं थोड़ी आगे कथा कह रहा हूं, भगवान का अवतार सामान्य रूप से क्यों होता है, उसको तो भगवान ने गीता विषय में कह दिया है, जगह जगह ही धर्म से ग्लानिर भवती भारत अभ्युत्थान अधर्म से तदात्मान से जाम्य हम। जब जब धर्म की अवस्था हीन होती है, ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, धर्म का पालन नहीं होता है और अधर्म बहुत बढ़ जाता है, तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूं। क्यों प्रकट करते हैं? सब स्थिति को ठीक करने के लिए। यहां धर्म क्या है जीव का? धर्म है भगवान से प्रेम करना। जब जब लोग भगवान को विस्मृत हो जाते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते और स्वच्छंद आचरण करते हैं, पाप करने लगते हैं, तो उस समय भगवान यहां आते हैं, अपने को दिखा करके, अपनी लीला प्रवाहित करके भक्ति का संचार करते हैं, धर्म का प्रवर्तन करते हैं। और इसके साथ ही जो अधर्म के पोषक होते हैं मनुष्य, यासुर उनका वध कर देते। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताय। साधुओं का परित्राण करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए मैं जुग जुग में अवतार लेता हूं। तो उसी कारण को यहां पर कहा जा रहा है। उस समय रावण का जन्म हो गया था भगवान के अवतार के पहले, तो रावण के अत्याचार का वर्णन थोड़ा किया था। ये है दोहा 180 से के बाद चालू करेंगे बालकांड। इसके पहले ये वर्णन किया गया भगवान शिव के कथा कह रहे हैं पार्वती जी से कि रावण का जन्म हुआ, रावण को ब्रह्मा जी ने वर दिया और विभीषण को भी वर दिया, कुंभकर्ण को वर दिया, ये तीन भाई थे। तो रावण को वर दिए तो सरस्वती जी ने उसकी बुद्धि को कुछ भ्रमित किया, तो मांगा कि मैं अजर रहूं, अमर रहूं, दो व्यक्ति को छोड़कर मेरी मृत्यु किसी से न हो। जब ब्रह्मा जी ने कह दिया कि नहीं अमर होना कठिन है, कुछ और ढंग से मांगे, तो उसने कहा ठीक है, कॉम्प्रोमाइज किया, तो ठीक है बानर और मनुष्य को छोड़ करके और से किसी से मेरी मृत्यु न हो। तो वो ये बुद्धि लगाया कि अगर ब्रह्मा जी हमको और देवताओं से सुदर्शन चक्र आदि से अभय कर देंगे तो बानर और भालू को तो मैं ऐसे ही खा जाता हूं, थोड़े जा सकते जिसको बड़े बड़े देवता दैत्य नहीं मार सकते, उसके बानर कोई क्या करेगा और भी आदमी क्या करेगा, इतना कमजोर। हम काहू के मर ही मारे, बानर मनुज जात दुई बार, दो को छोड़ करके हमको कोई न मारे, ये मार सके उसे तक नहीं मारे। और रावण इतना विद्वान था, वो जब अपना सिर काट कर हवन किया अग्नि में, शिव जी को चढ़ा रहा था, अग्नि में जलने पर उसके ललाट में वो रेखा ब्रह्मा जी की लिपि, वो राइटिंग था, ब्रह्मा जी लिखते हैं ललाट में और हथेली में ब्रह्मा जी लिखते हैं कब मृत्यु होगी, कहां मृत्यु होगी, आगे क्या होना है। रावण ने बांचा बात, अपने ललाट को जलता हुआ देखा और बांचा, नरके कर आपन बध बांची, हंसे उजानी विधगिरा असांची। उसे रावण कहता है जब मैं सिर काट करके भगवान शिव को अर्पित किया, तो उस समय लिखा हुआ था ये ब्रह्मा की वो ही बुद्धि देखी है, वो अपनी बड़ाई कर रहा है, बहुत दिन का हो गया ब्रह्मा ना, तो इसलिए बूढ़ा पागल हो गया, ये मनुष्य के हाथ से मेरी मृत्यु लिखा, नरके कर आपन बध बाची हसे जन विधि गिरा असाक्षी। मैं तो जानता ही नहीं कि ब्रह्मा जो लिखा है बिल्कुल असाक्षी, सच्ची बात नहीं, झूठी है, देखिए लिखा है। आप ही लोग बताइए, हमको कोई मनुष्य मार सकता है? अपने सभा में बोल रहा, तो उसको ब्रह्मा जी ने मार दिया, विष्णु जी को मार दिया। उन्होंने मांगा कि भगवान विष्णु के चरण कमल में मेरा अमल अनुराग हो, यही वर दीजिए। बस नहीं, भक्ति भी किसी श्रेष्ठ वैष्णव के वर देने से बढ़ती है, इसीलिए कहा गया है कि साधुओं का आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए। तो विभीषण जी को शुरू से ही भगवान के अमल भक्त, और कुंभकर्ण के पास आए, इसके पहले सब लिखा गया है, तो कहे कि बेटा वर मांगो। लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर ये रोज जगा रहेगा तो खाएगा तो सारी सृष्टि को ही खा जाएगा, इतना बड़ा शरीर था, इतना खाता था। जो यही सठ नित्य करब आहार तब उजार हो संसार, सारा संसार उजार हो। तो उन्होंने कुछ प्रेरित करके अपनी माया शक्ति से और उससे बल मांगने को कहा, तो उसने मांगा कि मैं 6 महीना सोऊं और 1 दिन जागूं, ये बर दीजिए। और चलो 6 महीना में 1 दिन खाएगा, कितना खाएगा? 6 महीने सोया रहेगा, केवल 1 दिन खाएगा। जिस दिन 6 महीना पूरा होता था तो उस दिन 50 भैंसा, हजारों घड़ा मदिरा, मांस और सब जुटाया जाता था, क्योंकि कोई सात्विक आहार ही नहीं था, राक्षस था, कई ऐसे जुटाए जाते थे और सबको ले लेकर के खाया करता, खाकर फिर से कई कई बार कुछ लोग को मुकर जैसे होते हैं, जगते हैं खाने के लिए और खाकर फिर से, और सोने के बाद तुरंत उठ करके कुछ न कुछ खाने लगते, फ्रिज खोले या जैसे करते फिर कुछ चालू हो। तो कुंभ करे बर्मा का इसके कंस के परिवार, रावण के परिवार का वर्णन किया गया है यहाँ, कौन कौन थे, कैसे थे, यहां से हम चालू कर रहे हैं। काम रूप जान ही सब माया, सपने जिनके धर्म न दाया, 180 दोहा के बाद चालू। काम रूप जान ही सब माया, ये लोग अपनी इच्छा के अनुसार रूप बना लेते थे, और सपने में भी वे कभी नहीं देखे कि मैं किसी पर दया कर रहा हूं और धर्म कर रहा, सपने हूं जिनके धर्म न दाया। मान लीजिए कोई प्रकट पापी हो, अगर नहीं धर्म कर रहा है, किसी जीव का उपकार कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, किसी पर दया कर रहा है, कम से कम सपना तो कभी देखे कि आज मैं दान दे रहा हूं, मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूं। वो लोग तो सपने हूं जिनके धर्म न दाया, सपने में भी कभी धर्म और दया नहीं जाए। दशमुख बैठी सभा एक बार, एक बार दशमुख राम अपने परिवार के सभा में बैठा, जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे, सेना के नायक, वे भी बैठे थे और अपने पुत्र नाती आदि सब बैठे थे। दशमुख बैठ सभा एक बार देखी, अमित आपन परिवार देखा, अपना परिवार सब राक्षस थे। हमारे यहां कहते हैं कि 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, ओकरा घर में दिया न बाकी। जब वो मर गया रावण, तो उसके बाद कहा जाता है कि उसके 1 लाख बेटा थे और 1.25 लाख नाती थे, लेकिन उसके घर में दीपक जलाने वाला कोई नहीं बचा है विभीषण के अलावा। तो विभीषण जी कौन कौन घर में दीपक जलाते, एक ही बचे थे, रावण के बेटा और नाती सब मारे गए लंका के युद्ध में। वास्तव में भगवान ने अद्भुत लीला किया था, असंख्य असुरों को मारा था राक्षसों, एक सीता का बदला चुका नहीं, बहाना बनाया ये कहे तो देखिए अमित आपन परिवार, आपन परिवार मतलब राक्षसों का परिवार देखा, सुत समूह जन परिजन नाती गणय गणय को पार निश्चर जाए, कौन गिन सकता है, किसके पास इतना ज्ञान है कि उसके पुत्र नाती परिजन स्वजन आदि को गिन सकता है, मतलब असंख्य थे, गिनती से बाहर थी। सेन बिलो की सहज अभिमानी बोला बचन क्रोध मदसान, और अपने सेनापतियों को सेना को जब देखा लगता है कि कहीं फील्ड में बहुत बड़े फील्ड में मीटिंग किया था, कोई घर में नहीं, वहां देखा अपार राक्षसों की सेना, बहुत प्रसन्न हुआ और वह क्रोध और अभिमान से बोला, सुनहु सकल रजनीचर जूठा, हे राक्षस के समाज, हे राक्षसों के समाज सुनो, सुनहु सकल रजनीचर जूठा, हमारे बैरी विबुध बल था, विबुध मतलब देवता, देवता हमारे बैरी हैं, हमारे दुश्मन हैं, ठीक जैसे कंस बोल रहा था अपने मंत्रियों से, ये देवता सब हमारे बैरी हैं, ते सम्मुख नहीं कर ही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाही पराई, वो सामने आकर नहीं लड़ रहे हैं, सामने देख कर को तो भाग जाते हैं, वास्तव में सत्य बात है, देवता भाग जाते हैं, इतने लोग बलवान थे भाग जाते हैं, तिनकर मरण एक विधि होई, कहो बुझाई सुनहु अब सोई, उनकी मृत्यु देवताओं की एक तरीके से होगी, और मैं समझा करके कह रहा हूं सब लोग ध्यान से सुनो, वो ये मत कहना कि ये बात नहीं सुना या नहीं सुना, सुनो, उनके मरने का एक ही उपाय है, द्विज भोजन मखहोम श्राधा सबके जाय करहु तुम बाधा, तुम पूरे दुनिया में घूम करके देखो कहीं भी कोई ब्राह्मण वैष्णव भोजन नहीं होना चाहिए, द्विज भोजन नहीं होना चाहिए, सीधा अपराध, ये कहिए सब विष्णु के भक्त हैं इसलिए तो द्विज भोजन और यज्ञ हवन और श्राद्ध कहीं कोई न करे, जहां कोई करने वाला हो तो सबके जाय करो तुम बाधा, सबने बाधा डालो, खत्म करो सब, मतलब इनको मारो, ब्राह्मणों को मारो, यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को कत्ल करो, श्राद्ध कोई न करे पितरों का, ये सब झूठा है झमेला है, अच्छा लेकिन नहीं वो झूठा नहीं कर रहा था, सत्य है, इसी से देवताओं का पोषण होता है, जब ये नहीं होगा हवन नहीं होगा तो क्षुधा छीन बलहीन सुरस सहजे ही मिल जाएगा, तो भूख से बिल्कुल दुबले हो जाएंगे देवता, जब हवन नहीं किया जाएगा तो मरेंगे, भोजन नहीं मिलेगा, यज्ञ नहीं होगा, भगवान का कीर्तन नहीं होगा, तो सब अब क्या करेंगे, सहजे ही मिली है हीरा, अब हमको मिल जाएंगे सहज में ही, तब मारी उनकी राखी हूं भली भांति अपना, तब जो विचार करेगा उनको मारे या छोड़े, लेकिन उनको मारने का ये उपाय है, यज्ञ नहीं होना चाहिए, श्राद्ध नहीं होना चाहिए, ये सब फीस्ट उत्सव कुछ नहीं होना चाहिए, कोई करने वाला हो उसको जाकर मारे, ये आज्ञा दिया सरकार, जैसे हिरण्यकश्यप और कंस आज्ञा दिए हैं भागवत में वर्णन में, उसी तरह से राम ने आज्ञा दिया, उसका एक बेटा था जिसको मेघनाद कहते थे, उसकी आवाज मेघ के गर्जन के समान होती थी, इसलिए उसका नाम ही मेघनाद हो गया, नाद माने ध्वनि, तो मेघनाद कह कुनी हंकारा दिन सिख बल बैर बढ़ावा, बुलाया मेघनाद को अपने सामने, बेटा सुनो तुम्हारा कौन बैरी है कौन दुश्मन है इसको समझ लो, और उसके बल को बैर को बढ़ाया कह कह करके, जे सुर समर धीर बलवाना जिनके लड़वे कर अभिमाना, जो देवता युद्ध में वीरता दिखाते हैं अपने को वीर समझते हैं, जिनको लड़ने का अभिमान है, उन देवताओं को युद्ध में जीत करके और बांध करके मेरे पास लाओ,
सारे बड़े बड़े देवताओं के, ये रावण आज्ञा दिए, इसका नाम आगे इंद्रजीत हुआ भी, इसलिए इंद्र को जीत लिया था, बांध कर लाया था रावण के पास, वो कथा है। तो आज्ञा दे रहा है मेघनाथ को, जे सुर समर वीर धीर बलवाना, जिनके लड़िवे कर अभिमाना, तिना ही जीत दन आने सुबांधी, उठी सुत पितृ अनुशासन कर। इतना सुनते ही मेघनाथ उठा और अपने पिता की आज्ञा को स्वीकार किया, तथास्तु, जो आज्ञा, इतनी सुंदर आज्ञा हुई बहुत ईर्ष्या पड़ गया, बल पड़ गया। यही विधि, सब ही आज्ञा दिन, सबको आज्ञा दिया, तुम इधर जाओ, इसको मारो, ये करो, वो करो, और आपुन चले गदा कर ली, और स्वयं चला हाथ में गदा लेकर, जैसे हिरण्याक्ष चला था गदा लेकर, स्वयं चला, चलत दशानन डोलत अवनी, और जो चलता था गदा लेकर तो पृथ्वी में भूकंप आ जाता, पृथ्वी से दगमग करने लगती। ये सत्य बात है, कोई कविता नहीं है। चलत दशानन डोलत अवनी, गरजत गर्भ श्रम ही सुर गमन, और जब गरजता था, अट्टहास करता था, तो देवताओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते, इतना भयंकर इसका गर्जन होता था। रावण आवत सुने सको है, देवन तके मेरु गिरिखो है, जब देवताओं को पता लगा कि रावण सको है क्रोध के साथ आ रहा है, तो सारे देवता अपना अपना नगर छोड़ छाड़ करके और मेरु पर्वत की गुफा में भाग गए, छिप गए। देवन तपे मेरु गिरि खोहा, मेरु पर्वत के खोह में सब छिप गए। दिग्पालन के लोक सुहाए सुने सकल दशानन का, जितने भी वर्ण यही इंद्र कुबेर चंद्र सूर्य आदि जो लोक थे, सब देखा, सब खाली पाए, सब भाग गए, मेरे पर्वत के गुफा में सब भाग गए थे, कंगरा में भाग गए, तो सबको सुनना पाया। दिग्पालन के लोग सुहाए, बड़ा सुंदर नगर था, लोक था, लेकिन देवन सुने सकल दशा में, सब सुना, सुनने देखा कोई नहीं। उनिपुनि सिंह नाद कर भारी, फिर सिंह जैसा दहाड़ रहा था, देई देवतन गारी प्रचारी, जब सब भाग गए तो उच्च स्वर से हैंड माइक लेकर गाली दे रहा था। नहीं, उसके तो आवाज ही बहुत बड़ी थी, माइक लेने की जरूरत नहीं, खूब गाली दे रहा कि जिससे कि गाली सुन करके रंज होकर के आ जाए, लेकिन घरों में कोई था ही नहीं, आगे कौन गाली दे रहा प्रचारी का अर्थ खूब जोर से उच्च स्वर से गाली दे रहा था। रनमत मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कत हुन पाव, इस तरह युद्ध के उन्माद से घूम रहा था, पर कहीं भी कोई प्रतिजोधा नहीं मिला रावण को। रविशक्ति पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जब सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुरनागा, हट सब ही के पंथ ही लागे। भगवान सूर्य, चंद्रमा, पवन देव, वरुण देव और धनधारी कुबेर जी, अग्निदेव, अग्निदेव, काल और जमराज आदि जितने अधिकारी हैं संसार के, और किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, सबके पीछे पड़ा, सबका घर खोजा, लेकिन सब भाग गए। पितृलोक में जो नरक का ऑफिस है, उसमें न जमराज जी थे, न उनका कोई दूत था, सब भाग। और ये मनमाना शासन चलाना चाहता था, जो पापी है उनको नरक नहीं भेजना है, नरक किसको भेजना है, जो तिलक करते हैं, हरे कृष्ण जपते हैं, सबको नरक मिलता है। हिरण्यकश्यपु के राज में तो इस शासन लागू था, हिरण्यकश्यपु का मानना था कि जो भोगी हैं, धनी हैं, सुंदर हैं, जिनके पास भोग अच्छा है, उनको पुण्यात्मा है, और अच्छा कर्म किए थे इसीलिए अच्छी गति मिली है, इसलिए इनको स्वर्ग भेजना है। और जो तपस्या करते हैं, एकादशी उपवास करते हैं, मंगलारती करते हैं, किसी तरह से जो दुखी है उनको नरक में भेजना, क्योंकि अभी भी दुख सहता है। हिरण्यकश्यप के शासन काल में हो रहा है ये, तो सबको देखा सब भाग गए, कोई सामने नहीं आया। ब्रह्म सृष्टि जहां लग तनधारी दशमुख बस वर्ती नरनारी। ब्रह्मा जी की जहां तक सृष्टि है दशमुख के बसवर्ती नरनारी थे सब, सब उसके अधीन थे, इतना प्रचंड शासन है। ये सब सत्य है, अपने वैदिक ग्रंथों में सब सारी बातें लिखी गई है। भुजबल विश्व वश करी राक्षस को न सुतन थे, मंडलिक मणि रावण राज करे निजमान। इस तरह से रावण राज करता, जितने भी शासक थे सब इसके अधीन थे, ये स्वतंत्र राज करता था अपनी मनमान। और एक और इसका क्या बहुत बड़ा दोष था, देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार जित बरी निज बाहुबल बहुसुंदर वरना। जहां भी सुनता था किन्नरों के यहां, गंधर्वों के यहां, देवताओं में नागों की कुमारियां, मनुष्यों की कुमारियां, जाकर के जीत करके सारे कन्याओं का, स्त्रियों का हरण करता था, वश में किया, कई हजार लाख स्त्रियां रखा थे, अब जबरदस्ती लाता। इंद्रजीत सन जो कछु कहे सो सब जन पहले ही कर रहे। इंद्र जिसको मेघनाथ को जो आज्ञा देता था, ये तो ऐसा लगता था कि इंद्रजीत पहले से ही करके रख दिया, मतलब जल्दी करता, इसका मतलब यह इंद्रजीत को जो कुछ करने के लिए कहता था ऐसा लगता था कि इंद्रजीत पहले से ही पूरा कर दिया। बहुत आज्ञाकारी बेटा थे, कहने का मतलब ये है, उत्पात करने में, अत्याचार करने में वह रावण का पूर्ण फॉलोअर था, पितृभक्त थे। प्रथम ही जिनको हम आयस दिना तिनकर चरित सुनहु जो की, और राक्षसों को जो कुछ आज्ञा दिया सारी दुनिया में उन्होंने क्या किया जरा इसको सुनो। पार्वती जी कहते नहीं, भगवान शिव पार्वती जी से कहते कि सुनो क्या करते थे। देखत भीम रूप सर्व पापी निश चरणे कर देव परिपाटी। दिखने में भयंकर थे, खूब मोटा मोटा बड़ा बड़ा शरीर, भयंकर मुख, भयंकर दांत, आंख, सब कुछ। निश्चर निकर देव परिताती, झुंड के झुंड राक्षस देवताओं को ताप देने वाले, दुख देने वाले चक्ते। कर ही उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धर ही कर माया। कर ही उपद्रव असुर निकाय, निकाय मतलब समाज, झुंड, ये असुर समूह मिल करके बहुत उपद्रव कर रहे थे, अनेक रूप बना करके और अनेक प्रकार के कपट की माया से लोगों को मार रहे थे, सता रहे थे। इनका उद्देश्य क्या था सब करने का, जय ही विधि धर्म हो निर्मूला, सो सब कर ही वेद प्रतिकूला, जिससे धर्म बिल्कुल निर्मूल हो जाए। धर्म का मूल क्या है, धर्म के मूल है भगवान, धर्म का बिल्कुल जड़ उखड़ जाए, धर्म रूपी वृक्ष की जड़ न रहे, और वेद के विरुद्ध जो भी काम करना है सब करते, सर्विधि कर ही वेद प्रतिकूल है, यही उनका उद्देश्य था। शास्त्रों को जला देना, नहीं मानना, भगवान विष्णु का टोटल विरोध, ब्राह्मणों का विरोध, गौरों का विरोध, ऋषियों का, सबका विरोध करते। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावही, नगर गांव पुर आगर लगावही। जिस जिस देश में ब्राह्मण पाते थे, द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य रहते थे, जहां भी और गौवें जहां रहती थी, नगर गांव पुर आग लगावही। नगर में, गांव में सब जगह आग लगाते थे, ट्रेन में भी बम विस्फोट करते थे, यहां से ये राक्षस, यही इनका धर्म है, यही इनका ढंग, दूसरों को दुख देना इसी में रुचि रखते।
नगर गांव पूरे आग लगाए राक्षस इस तरह। भगवान को आने की जरूरत पड़ती है क्या? आप समझ रहे होंगे क्यों जरूरत है। बिना भगवान के असुरों का वध कोई कर ही नहीं सकता, वही सबका वध कर देते हैं। ऐसी दशा थी, नगर गांव पूरा आग लगा रहे हैं, किसी गांव में सीधा ढेर करके और आग लगा देना। इसलिए उस गांव में ब्राह्मण रहते थे, क्षत्रिय रहते थे, वैश्य रहते थे, जो भगवान विष्णु की भक्ति करते थे, या द्विजाति सभी मतलब चार वर्ण के लोग रहते थे, और गौरें रहती थी, ऋषि लोग वैष्णव लोग रहते थे, भक्ति करते थे। उस गांव में विशेष करके जाकर के आग लगाते थे, शहर में गांव नगर में आग लगाते थे। जय जय देश भेन बीज पा वही नगर गांव पूरे आग लगा वही नगर गांव पूरे आग लगा वही नगर गांव पूरे पुर का मतलब है बड़ा गांव या टाउन, और नगर माने तो बड़ा बड़ा नगर, और जो बाजार पुर से तत्पर जो बाजार, बाजार में आग लगा देते थे, गांव में आग लगा देते थे, जहां जहां द्विज और धेनु पाते थे, जहां जहां गाय और ब्राह्मण वहां करते थे। सुभया चरण कतहु नहीं होई, कहीं भी कोई शुभ आचरण नहीं कर पाता था। विप्र देव विप्र गुरु मान कोई, कोई भी व्यक्ति मान नहीं सकता था, इतना अनुशासन करता। न देवताओं को मानना है, न ब्राह्मण को, न गुरु को, किसी को नहीं मानना। देव विप्र गुरु मानने में कोई नहीं, सब डर करके नहीं करते। और जो जनता थी राक्षसों के अत्याचार से भयभीत थे, सब कुछ भी नहीं करते। कहीं हवन करे और धुआं उठ गया तो उस पूरे गांव में आग लगा दिया जाता। क्यों कर रहे हो? जब रावण की आज्ञा है क्यों किया तुमने? इस तरह से करते थे। नहीं हरि भगती जग्य तत् ज्ञाना, सपने हूं सुनिए न वेद पुराना। कहीं भी भगवान की भक्ति कोई नहीं कर सकता था, न यज्ञ न तप न ज्ञान का प्रवचन, और जनता इतनी भयभीत हो गई थी। सपने सुनिए न वेद पुराना, जागृत में ऐसा फेस्टिवल कर लेना तो बिल्कुल असंभव था ही, सपने में भी कोई पुराण नहीं सुन सकता था। भागवत वेद पुराण पर कोई प्रवचन कर रहा है सपना में, मान लीजिए ऐसा सपना भी नहीं आता था किसी को, क्योंकि इतना रावण का भय छाया था कि सपना कहां से आ रहा। दिन भर भय से दूसरा काम कर रहा है, उनका चिंतन कर रहा है, कोई पाप नहीं करता था, जनता नहीं करती थी, लेकिन उसके भय से कोई पुण्य भी नहीं था, कुछ नहीं। सपने हो सुनिए न वेद पुराण, सपने में भी वेद पुराण का श्रवण नहीं। आजकल यही स्थिति है वास्तव में, कुछ लोग सपने में भी भागवत नहीं सुनते होंगे, टीवी आदि देखते रहते हैं, अखबार पढ़ते रहते हैं, मांस खाते हैं। ये पापी नहीं तो क्या है, राक्षस ही है। तो मांस खाने वाले शराब पीने वाले राक्षस ही वास्तव में। तो उस समय तो प्रकट ही सब कुछ से ऐसा शासन ही कर दिया गया था। नहीं हर भगत यज्ञ तप ज्ञान, सपने सुनिए न वेद पुराण। वेद पुराण श्रवण करना मानव जाति की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मनुष्य शरीर पा करके वेद शास्त्र का अवश्य पठन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। अगर नहीं पढ़ सके तो श्रवण तो अवश्य करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने वेद शास्त्र दिया है, बुक्स दिया है, कहा है पढ़ो पढ़ो, रीड माय बुक्स, रीड माय बुक्स, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़ने पर बहुत जोर है। तो वेद शास्त्र सुनना ये मनुष्य जीवन का सर्वोपरि श्रेष्ठ कार्य है। इससे भगवान का ज्ञान होता है, भगवान में प्रीति बढ़ती है, और जीवन में जो कुछ भूल चुक होती है तो वो आदमी से दब जाता है। अभिमान मद ये सब दूर होता है, काम दूर होता है, क्रोध दूर होता है। परंतु रावण के राज्य में सपने हो सुनिए न वेद पुराण। जप जोग विरागा तप मख भागा, जप
योग विराग तप यज्ञ सब भाग गए। ऐसा तुलसीदास वर्णन करके लगता था कि यही भाग गए, कोई करता ही नहीं था, जप भाग गया। फिर माला झोली दिखाने का कौन साहस कर सकता है, अगर कोई दिखाई पड़े तक पड़ जाता तो उसी समय कतल कर दिया। जप को पहले करो, जप भागा, योग भागा, योग भाग गया। योग मतलब भगवान का चिंतन, अष्टांग योग आदि, ये सब कोई नहीं करता। और इस समय जोगा जोगा है, योग नहीं है, अयोग है, ये केवल आसन करना, स्कार संचालित करना, ये योग नहीं है। योग है भगवान विष्णु का चिंतन करना, भजन करना। तो जप नहीं था, योग नहीं था, ये सब भाग गए। और वैराग्य भाग गया, तप भाग गया, मख जप ये सब भाग गया। श्रवण सुनई दस शीर्षा, यदि कहीं पर दस शीर्ष सुन लेता था कि वहां पर एक आदमी जप कर रहा है अथवा कोई यज्ञ कर रहा है, कोई दूसरों को खिला रहा है, खासकर वैष्णव को और ब्राह्मण, तो आपुण उठी धाव, सुनते ही स्वयं दौड़ जाता। दौड़ने का मतलब रथ से जाता था, पैदल नहीं, या निकट होता था तो पैदल जाता, दौड़ जाता था। आपुण उठी धाव, रह न पावई, हरिषद घाल खीसा, और खीस में क्रोध में सबको मारने लगता, जहां भी सुनता था ये सब धर्म कर। असभ्रष्ट आचार भा संसार, धर्म सुनिए नहीं काना, कान में धर्म शब्द का उच्चारण भी नहीं किया जा सकता। इस कान को यह भी दुर्लभ था, धर्म शब्द सुने, करना तो दूर की बात है, धर्म शब्द भी नहीं सुन सकते। तही बहुविधि त्रासय देश निकासय जो कह वेद पुराण, और कोई पकड़ लिया जाए कि वो वेद शास्त्र पर भागवत पर प्रवचन कर रहा है, उसको तो बहुत धमकी देना, मारना पीटना और देश से निकाल देता है, उसके पूरे परिवार को देश से निकाल देता है। देश निकाला का मतलब ये नहीं कि निकाल कर कहीं दूसरे देश का भिसा दे दिया चला गया, जंगल में, समुद्र में, पहाड़ में फेंकवा दे। तो बहुविधि त्रास है, देश निकास है, जो कह वेद पुराना है। कभी कभी लोग कहते हैं कि अब कब भगवान लेंगे, इतना पाप हो रहा है, अभी तो वेद पुराण की कथा चल रही है, अभी खराब समय नहीं आया है उतना जितना रावण के समय में आया है। अभी कुछ भक्त जप कर रहे हैं, कुछ लोग दान करते हैं, दान में रोकने वाला कोई नहीं है, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वैष्णवों को भोजन कराते हैं, गौओं को दान देते हैं, गौओं को खिलाने का चारा देते हैं, अभी तो है ना धर्म। लेकिन तेई बहुविध त्रासय देश निकासय जो कह वेद पुराण, वेद पुराण कहना है समाज का बहुत बड़ा कल्याण है, तो ऐसे लोगों को तो कत्ल कर देगा सीधा ना कर। बदनी न जाई अनीत घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीत तिनके पाप ही कवन मिति। क्या कहूं पार्वती, वर्णन नहीं किया जाता है। बदनी न जाई अनीत घोर निशाचर जो कर, इतनी अनीति, इतने उपद्रव करते थे कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा, दूसरे की जान मारना है उनको बहुत प्रिय था, हिंसा पर अतिप्रीत, उनके पाप की क्या नीति है, क्या ओर। बाढ़े बहु खल चोर जुआरा, समाज में चोर और जुआरी, जुआ खेलने वाले बहुत बढ़ गए। बाढ़े बहु खल चोर जुआरा, जेता कहीं पर धन पर दारा। ऐसे जुआरी और चोर सब भर गए, जो दूसरे की औरत और दूसरे के धन को लेने के ताक नहीं रहते। जेता कहीं पर धन पर दारा, यह ताकने का अर्थ है मतलब उसे लेने की, लेने का उपाय करना, दूसरे का धन कैसे आंख लेंगे और दूसरे की पत्नी को कैसे कुचलाकर उसको अपने बस में कर लेंगे। इस तरह के गुंडे उस राज्य में बहुत हो गए, भर गए चारों तरफ। आज लगभग यह स्थिति आने वाली है, इस विषय में आ ही गई है, दूसरे का धन लेना, दूसरे की स्त्री और जुआ खेलना, शराब पीना, चोरी करना, बाढ़े बहुखल चोर जुआरा बहुत बढ़ गए। बाढ़े बहुखल चोर जुआरा जे लंपट पर धन पर दा, दूसरे के धन और दूसरे की स्त्री के प्रति लंपट। माँ नहीं माँ तू पिता नहीं देवा, साधु से करवा सेवा। जो माता पिता और देवता को भगवान को बिल्कुल नहीं मानते और साधुओं से सेवा करवाते थे, ये सब सत्य है। वन में जाते थे, किसी आश्रम में जाते थे, कोई साधु है चुपचाप बेचारा बैठा है, भगवान का चिंतन कर रहा है, ऐ चलो मसाज करो, उस व्यक्ति को भजन छोड़ करके उस राक्षस को मालिश करना पड़ता और उस पर भी उस ऋषि को खाया जाते, सेवा करा करके खाया जाते। इतना मारे थे साधुओं को, ऋषियों को जंगल में खाए थे। एक जगह ऋषियों की हड्डियां जमा की गई थी, हार जमा किया गया था। भगवान श्री राम जब देखे, एक ऋषि से पूछते हैं, अगस्त से पूछते हैं कि ये कैसा पहाड़ है, तो कहे प्रभु आप देख नहीं रहे हैं, ये राक्षसों ने आपके भक्तों को ऋषियों को खा खा करके यहाँ हड्डी जमा किया है, वो पहाड़ जैसे। भगवान देखे निकट से और रो दिए, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उसी दिन प्रतिज्ञा किया, निष्ठर हीन करो मही भुज उठाई प्रण की, मैं इस पृथ्वी को राक्षसों से हीन करूंगा, मैं ये प्रतिज्ञा करूंगा। रामो द्वीर न भा सके, राम दो वचन नहीं बोलते, कह दे तो कह दे। आंसू छा गया है भगवान के नेत्रों में, इतना दुख हुआ है। साधुओं को चला चला करके उनकी हड्डी को यहां जमा किया है। तब इस सीता का हरण वास्तव में करवाए, एक बहाना बनाए राक्षसों के मारने का उपाय, तो भगवान बिना मतलब के क्यों झगड़ा करेंगे। सीता का हरण करवा करके और उसका बहाना करके सारी राक्षसों के साथ कर दिए, इस तरह से बढ़े हुए थे। माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, साधु से करवा रही सेवा, साधुओं से सेवा। जिनके यह चरम भवानी, तेजा निशर सब प्राण। हे भवानी पार्वती, ऐसा आचरण जिसका भी हो, वो भले मनुष्य हो कुछ भी हो, उसको राक्षस ही समझना चाहिए। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी, अतिशय देखी धर्म के ग्लानी, परम सभीत धराय कुलानी। जब इस प्रकार धर्म का ह्रास हुआ, पाप होने लगा, तो यह पृथ्वी पाप के भार से बिल्कुल दब गई, रोने लगी, भयभीत हो गई, अकुला गई, तो कहने लगी, गिरिशरी सिंधु भार नहीं मोही, मुझ पर पर्वत नदी समुद्र का कोई भार नहीं है, मैं मेरु पर्वत को भी धारण कर सकती हूँ, करती हूँ, बड़े बड़े पहाड़ नदी सरोवर सिंधु ये भार नहीं है। जसमय गर्व एक पर द्रोह, दूसरे को सताने वाला, दुख देने वाला जितना भारी मुझे लगता है, उतना भारी मुझे समुद्र पहाड़ नदी सब नहीं, ये सब पृथ्वी का ही है, एक से एक भारी पर्वत, लेकिन ये पृथ्वी तभी कहती है मुझे न, मुझे भारी नहीं लगता। भारी कौन लगता है, कौन लोड बढ़ जाता है, जो दूसरे का दूसरे को दुख देने वाला है, सताने वाला है, उसका भार मैं नहीं सह सकता। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रामन भय भी। दिखने लगी पृथ्वी सब कुछ विपरीत हो रहा है सब कुछ, लेकिन रावण के भय से कुछ कह नहीं पाती थी भगवान से। रावण का इतना बोल वाला था राष्ट्र, कौन कहां जा रहा है वो सारा देख लेता था। पृथ्वी भय के मारे बोलती नहीं थी, किसी से कहती नहीं थी, बंद में देख नहीं रहा गया तो धेनु रूप धरि हृदय विचारी गई तहा जहां सुर मोहन जारी। गाय का रूप बना करके माता पृथ्वी और पत्ता लगाते लगाते जहां सारे देवता थे मेरु पर्वत के कंदरा में इधर उधर वहां गई और उनसे रो करके सारा वृतांत कहने लगी। वो तो सब जानते ही थे देवता, लेकिन वो क्या करे। निज संताप सुनाये सिरोई, रो रो करके अपना दुख सुनाने लगी, लेकिन काहू ते कछ काज न होई। परंतु पार्वती किसी देवता में शक्ति नहीं थी कि पृथ्वी का दुख दूर कर सके। सुर मुनि गंधर्व मिलकरि सर्वागे विरंचिके लोका, तो सारे देवता गंधर्व आदि मिल करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सुरक्षित थे, उनको भय नहीं था। वहां सारे देवता गए और पृथ्वी को लेकर गए। स्वर्ग गोतन धारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका, साथ में गो रूप धारी माता पृथ्वी भी गई। बहुत दीन बन रही थी, शोक और भय से भरी थी। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना गोर कछु न बसाई। ब्रह्मा जी जानते थे पृथ्वी के दुख को सुने, देवताओं के दुख को सुने तो कहते हैं गोर कछु न बसाई, रावण पर मेरा बस नहीं चल सकता, मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी इस तरह कह रहे हैं, जाकर तय दासी सो अविनाशी हमारे उत्तर सहाय, तुम जिसकी दासी हो भगवान विष्णु की, वही प्रभु मेरे भी और तुम्हारे भी सहारे, वही कुछ कर सकते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। धरनी धरहि मन धीर कह विरंचि हरि पद सुमिरि जानत जन की धीर प्रभु भंजहि दारुण विपति। हे धरनी माँ, तुम सबको धारण करने वाली हो, तुम धैर्य धारण करो। तुम धैर्य नहीं धारण करोगे तो सारे सृष्टि के जीव कैसे टिकेंगे। तुम धैर्य रखो, प्रभु तुम्हारे दुख को जानते हैं, वो सर्वज्ञ है। धरल धर ही मन धीर कह विरंच हरिपद सुनिए, भगवान के चरण कमल का स्मरण करके ब्रह्मा जी बोले धैर्य रखो, जानत जन की पीर, अपने भक्त की पीड़ा को दुख को भगवान जानते हैं। प्रभु भंज ही दारुण विपत्ति, तुम्हारे दारुण दुख को दूर करेंगे, तुम चिंता मत करो। इस तरह से ब्रह्मा जी ने कहा था चिंता मत करो, लेकिन आखिर भगवान से कहा जाएगा तब तो विपत्ति निवारण करेंगे ना, क्या उपाय किया गया। तो देवता सब बैठे थे ब्रह्मा जी की सभा में, माता पृथ्वी भी थी गौर रूप में। बैठे सुर सब करही विचारा, बैठे सब विचार कर रहे देवता लोग, मीटिंग की, कहां पाई ये प्रभु करिए पुकारा, हम भगवान को कहां पाए और कैसे पुकारे उनको, भगवान कहां रहते हैं। देवताओं को तो सब कुछ मालूम था कि वैकुंठ में रहते हैं, शिव सागर में रहते हैं, उनको पता था, ऐसे ही कल्पना करने लगे लोग कहां जाए कहां पुकारे प्रभु को। पूरे वैकुंठ जान कह को कर दिवस प्रभु सो, कोई देवता कह रहे थे कि वैकुंठपुर चलना चाहिए, नहीं ये कहे पूर्व वैकुंठ जान कह कोई, कोई कोई कहे वैकुंठ में चलना चाहिए, वहां जाने की शक्ति तो नहीं है, भगवान वैकुंठ में रहते हैं अपने लोक में। कोई कोई कहते थे भगवान इसी प्राकृत जगत में क्षीर समुद्र में रहते हैं, श्वेत द्वीप में, जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे। कोई कह रहे थे वैकुंठ में चलना चाहिए, कोई कह रहे थे पाय निधि, पाय माने दूर निधि, जल समुद्र में रहते हैं, क्षीर समुद्र में रहते हैं।
जाके ही दये भगती जसती प्रभु कह प्रकट सदा ते।
कोई गलत नहीं बोल रहे थे। भगवान शिव कहते हैं कि जिनके हृदय में भगवान के प्रति जैसी प्रीति थी, प्रेम था, भक्ति थी, उसके अनुसार भगवान सत्यगत प्रकट है। जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे। भगवान यहाँ रहते हैं, भगवान यहाँ रहते हैं, ये भक्तों का विचार था, देवताओं का। तो भगवान शिव कह रहे हैं अपनी पत्नी से, पार्वती जी से, ते ही समाज गिरजा में रहूं, उस समाज में मैं भी था। जब इस प्रकार का विचार चल रहा था, विचार गोष्ठी इष्ट गोष्ठी चल रही थी, तब ब्रह्मा जी कहे भगवान शिव से, आपका क्या विचार है, आप बताइए भगवान को कहाँ पुकारा जाए, कहाँ रहते हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा, तेई समाज गिरजा में रहन अवसर पाई वचन एक कहन। जब हमसे पूछा गया तब मैंने यह बात कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमते प्रकट हो ही मैं जाना। तो हमने कहा, हे पार्वती, कि भगवान श्री कृष्ण तो सब जगह रहते हैं, सर्वत्र, हरि व्यापक सर्वत्र समान, समान रूप से व्यापक है, कहीं ज्यादा या कम नहीं रहते, सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं। कहीं भी कोई व्यक्ति उनसे प्रेम करे, उनका जप करे, कीर्तन करे, तो प्रकट हो जाए। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जान, मैं जानता हूं। ये भगवान का स्वभाव है, इनसे जो प्रेम करता है, पुकारता है, तो अवश्य प्रकट हो जाए। अग जग सब रही, अब वो कहते प्रश्न करते हैं, देश काल दिशी विदिशा हुमाही कहूं कहा जहां प्रभु नाही। आप ही बताइए कौन ऐसी दिशा है या उसके विपरीत दिशा, उसको विदिशा कहते, दिशा विदिशा, दृष्टि विदिशा, कौन ऐसा देश है, स्थान है, और कौन ऐसा समय है जहां भगवान नहीं है, कौन ऐसा स्थान, अभी बताइए कौन ऐसा देश है? देश काल दिशी विदिशा घुमाई कहूं सो कहां जहां प्रभु नाही। भगवान का भजन सर्वत्र किया जा सकता है, सब जगह समान रूप से प्राप्त है, सब जगह समान रूप से। अग जग मै सब रहित विरागी प्रेमत प्रकट हो जिमियागी। भगवान जड़ चेतन में वस्तुओं के रूप में, अर्थात जड़ में, चेतन में, अग में, जग में हैं। जड़ माने जन्म और अग माने अचर, और अचर में है, चर में है, और सब रहित और सबसे परे है, दिव्य है, चिन्मय है, विरागी, कहीं उनकी आसक्ति नहीं है। प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे आग, जिमी आगी, आदि मैंने आग, आग सर्वत्र है, लेकिन आग प्रकट होती है, आग लग जाती है, तो आग बाहर से उतनी मात्रा में नहीं आती है, कोई भवन ही आग का रूप धारण कर लेता है। जैसे दिया सलाई से आग प्रकट करते हैं, लकड़ी को रखकर रगड़ करके आग प्रकट करते हैं, तो आग वहां पहले से है, तब प्रकट होता है, इतना ही हो सकता है। भगवान सब जगह है, जहां उसे कोई प्रेम करता है, उनकी भक्ति करता है, श्रवण कीर्तन स्मरण प्रणाम आदि करता है, भगवान से प्रेम करता है, तो प्रकट होता है। मोर वचन सबके मन मान, मेरी बात सभी देवताओं को अच्छी लगी, सब पसंद की। और दूसरी बात यह भी थी कि अब कहां कोई जाए, दम था ही नहीं, खाए बिना देवता से परेशान थे, रावण के अत्याचार से। तो सबसे श्रेष्ठ भजन की रीति यही थी कि भगवान का कीर्तन किया जाए, बस।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
मोर मधुर वचन सबके मनवाना, साधु साधु कही ब्रह्म बखान। ब्रह्मा जी ने कहा साधु साधु, बहुत बहुत अच्छा राय दिया, बहुत अच्छा, हम लोग तो घबरा करके सोच ही नहीं है, बहुत अच्छा साधु साधु, साधु का तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ब्रह्मा जी मेरी प्रशंसा की। सुनि विरंच मन हर सतन पुल की नयन बहनी, अस्तुति करता जोरी कर सावधान मति धीर। ब्रह्मा जी भगवान के परम भक्त हैं, मेरी बात सुन करके उनके शरीर में पुलक हो गया, आंखों में आंसू चुने लगा और वे हाथ जोड़ करके सावधान होकर धीर मति से भगवान का कीर्तन करने लगे। सारे देवता उनका साथ दे रहे थे लेकिन मुख्य स्वर ब्रह्मा जी का था, ये कीर्तन है अवतार लेने के लिए प्रार्थना। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोदी जहितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए श्री ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। जय जय सुर नायक, हे समस्त देवताओं के प्रतिपालक सबके नायक, आपकी जय हो जय हो, सब प्रकार का सुख देने वाले आपकी जय हो। प्रणत पाल, अपने शरण में आए हुए का पालन करते हैं और समस्त छह ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, ब्राह्मणों और गौओं का हित करते हैं। नमो ब्रह्मण देवाय, गो ब्राह्मण हिताय, गो द्विज हितकारी जय असुरादि। हे ब्राह्मण और द्विजों का हित करने वाले आपकी जय हो, हे असुरों के शत्रु आपकी जय हो, और हे सिंधुजा के प्रिय पति आपकी जय हो। सिंधु सुता मतलब ये लक्ष्मी जी समुद्र की बेटी है, समुद्र से निकली, तो सिंधु सुता के आप प्रिय कामत हैं, आपकी जय हो। भगवान का यह मतलब नहीं था कि कोई निराकार ऐसे लगे पुकारने और आकाश में देख करके, कोई गुण नहीं कुछ नहीं कोई रूप नहीं, ये प्रार्थना संकीर्ण नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप लक्ष्मी जी के प्रिय पति। पालन सुर धरनी आदिभूत करनी, मरमन जानी कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करउ अनुग्रह सोई। पालन सुर धरनी, आप देवताओं का पालन करते हैं, पृथ्वी का पालन करते हैं, आपकी अद्भुत करनी है, अद्भुत शक्ति है आप में, मर्म न जाने कोई आपके वास्तविक मर्म को तत्व को स्वरूप को नहीं जानता है। हे प्रभु आप सहज दयामय हैं, सहज कृपाला दीन दयाला, आप सहज कृपामय हैं और दीनों पर दया करते हैं। करउ अनुग्रह सोई, आप अनुग्रह कीजिए हम पर दया कीजिए। जय जय विनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतं चरित पुनीतं, माया रहित मुकुंदा। ये भगवान का गुण गाया जा रहा है। जय जय अविनाशी, हे प्रभु आपका कभी भी विनाश नहीं होता है, आप नित्य हैं, सब घटवासी आप सबके हृदय में बसते हैं, व्यापक परमानंद आप सर्वत्र व्यापक हैं और आनंद मूर्ति हैं आप, आनंद घन हैं। अभिगत गोतीतम, अभिगत आपका पार पाना अत्यंत कठिन है, इसका क्या अर्थ दिया गया है अभिगत का? अभिगत
अज्ञे, आप अज्ञे हैं और इंद्रियों के ज्ञान से अनुभव से परे हैं। आपका चरित्र अत्यंत पावन है, आप माया से शून्य हैं, आपको मुकुंद कहते हैं, आप मुक्ति देने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं। जय ही लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि गृहिंदा निशिवा सर ध्यावही गुण गन गावही जयति सच्चिदानंदा। आप ऐसे महान हैं, आपके लिए साधु महात्म बड़े बड़े योगी जाते वैराग धारण कर लेते हैं। जहिलागी विरागी अति अनुरागी, आपसे प्रेम करते हैं, वैरागी लोग भी आपसे प्रेम करते हैं और सब प्रकार के मोह से रहित होते हैं। विगत मोह मुनि वृंदा, मुनियों का समूह, भक्तों का समूह आपकी आराधना करता है। निशिवासर भयावही, दिन रात आपका स्मरण करते हैं, गुणगण गावही और आपका गुण समूह गाते हैं, गुण गण गाते हैं। उसमें क्या सबसे बड़ा गुण है? जयति सच्चिदानंद, भगवान का सर्वग्रह सच्चिदानंद है, उनकी लीलाएं, उनका जो कुछ भी धाम भक्त सब सच्चिदानंद। जय ही सृष्टि उपायी त्रिविधर बनाई संग सहायन दूत, जिन्होंने ये सृष्टि की है, जीवों का शरीर बनाया है, शरीर से भोगे जाने वाली सारी वस्तुएं बनाया, सूर्य बनाया, चंद्र बनाया, पृथ्वी समुद्र सब कुछ बनाया है। जय सृष्टि उपायी त्रिविध बनाए, तीन प्रकार की रजोगुणी तमोगुणी और सतगुणी सृष्टि आपने की है, त्रिविध बनाई, संग सहाय में दूर जाए, और सृष्टि करने में आपकी सहायता करने वाला दूसरा कोई नहीं था, अकेले किए। ये वाक्य भागवत में अनेकों बार आया, भगवान अकेले सृष्टि की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, प्रलय करते हैं। इस तरह भगवान सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, प्रलय करते हैं, संग सहाय में दूर जाए। कोई भगवान के साथ मदद करने वाला नहीं होता, कोई था ही नहीं, मदद क्या करेगा? जो भी उत्पन्न हुए हैं उनको भगवान ने पैदा किया, संग सहाय न दूर जाए। सो कर अघारी चिंता हमारी जानी ये भक्ति न पूजा। हे अघारी, हे अघासुर के दुश्मन, या अघारी कृष्ण के, आप हमारी चिंता कीजिए, हम पर ध्यान दीजिए, हम लोग कितने दुखी हैं, चिंता हमारी। हम लोग भक्ति और पूजा नहीं जानते, कर ही नहीं सकते, मतलब रावण के डर से देते लोग भक्ति नहीं कर सकते थे, किस तरह सांस लेते तो ठीक करते, और मन में ही जो स्मरण करना थे कर सकते थे, कीर्तन करने की हिम्मत नहीं थी। अभी भी इस पृथ्वी पर ऐसे ऐसे देश है जहां आप कीर्तन नहीं कर सकते, वो भी नहीं सकते, वैष्णव भेष में नहीं जा सकते, अभी भी नमूना बचा हुआ है। हम लोग भक्ति पूजा कुछ नहीं जानते हैं, आप हमारी चिंता कीजिए। जो भव भय भंजन मुनि मान रंजन गंजन विपति वरूथा। जो भव भय भंजन, जो जन्म मरण के भय को दूर कर देते हैं, संसार भय को दूर कर देते हैं, मुनियों के मन को प्रसन्न करते हैं, उन्हें बहुत प्रिय लगते हैं, मुनिमन रंजन गंजन विपत्ति वरूथा, जो विपत्ति समूह का गंज नाश कर देते हैं। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी सरण सकल सुर जूता। ये सारे देवता मन वचन क्रम से चतुरता छोड़ करके, कपट छोड़ करके आपके शरण में है, आपके शरण में है, आप रक्षा कीजिए। शारद श्रुति से सारी शेषा जा कहूं को नहीं जान। सरस्वती वाणी की अधिष्ठात्री देवी और वेद
और ऋषि सकल शेष नाग और अशेष ऋषि लोग सभी ऋषि लोग जाकर हमको नहीं जाना, आपको पूरा पूरा आपकी लीलाओं को सब तरह से विशेष कोई नहीं जानता, वेदे से दुर्लभ हम वेद भी नहीं जानता है पूरा पूरा, भगवान का गुण जाता है लेकिन पूरा नहीं जा सकता, भगवान शेष नाग भी नहीं जा सकते, शारदा सरस्वती भी नहीं जा सकती, जाकर हमको नहीं जाना, जे ही दीन प्यारे वेद पुकारे। वेद कहते हैं कि भगवान को दीन बहुत प्रिय है, दीनहीन व्यक्ति बहुत प्रिय होता है, तो हे प्रभु हम लोगों से दीन कौन होगा। जय ही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रव श्री भगवान, आप हम पर द्रवित होइए कृपा कीजिए। भवबारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमक नाथ पद कुंजा। आप इस भवबारिधि के मंदर हैं, जैसे समुद्र के बीच में मंदर पर्वत प्रकट हो तो बहुत बड़ा आश्रय होता है, सहारा हो जाता है, भारी समुद्र की लहरों में फंसा हुआ चीज मंदर पर्वत का सहारा पा गया, एक कोई नौका पा गया, बहुत समुद्र के आप नौका है या मंदर है, सब विधि सुंदर, आप सब प्रकार से सुंदर है, शरीर से सुंदर, स्वभाव से सुंदर, गुण में सुंदर, सब विधि सुंदर, गुण मंदिर, और आप गुणों के खजाना है, आश्रय है, स्टोर हाउस है, गुण मंदिर सुख पुंजा और सुख के पुंज है, घनीभूत स्वरूप है। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, ये मुनि सिद्ध देवता ये सब परम भय से आतुर है, नमत नाथ पद पं कंजा, आपके चरण कमल में हम सभी प्रणाम कर रहे हैं। इस प्रकार जब देवता रोते हुए भगवान का कीर्तन करते हुए प्रणाम करने लगे, उसी समय आकाशवाणी हुई, भगवान बोले, जानी सभय सुर भूमि सुने वचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संदेह। इस प्रकार जो रो रो करके और स्नेह से देवता सब प्रार्थना कर रहे थे, तो उसी समय आकाशवाणी हुई, गगन गिरा गंभीर भई, साक्षात भगवान बोले, हरनि शोक संदेह, शोक और संदेह सब चला गया उसको सुन करके। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लागी धरि हम नरवेशा। हे सिद्ध समूह, हे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ सुरेश गण और मुनिगण, जनि डर पहु आकाशवाणी ने कहा कि हे सिद्धों, हे मुनियों और हे देव श्रेष्ठों, डरिए मत, तुम ही लाग धरी हो नरवेशा, मैं आपके लिए अपना नर से विग्रह प्रकट करूंगा, मैं नरवेश धारण करूंगा, मैं मनुष्य अवतार लूंगा, अंशन सहित मनुज अवतार, मैं अपने अंशों के साथ मनुज अवतार लूंगा, कहां अवतार लूंगा, ले हूं दिनकर वंश उदारा, दिनकर के वंश में मैं जन्म लूंगा, दिन कर्म दिन करने वाला सूर्य वंश, सूर्य वंश इस उदार सूर्य वंश में मैं जन्म लूंगा, रघुवंश में जन्म लूंगा, ले हूं दिन कर वंश उदारा, कश्यप यदि महातप की ना तिन्ह कह मैं पूरब बर दीना। कश्यप और अदिति ने बहुत तप किया, मैं उनको बर दिया हूं, वही दोनों दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या में जन्म लेंगे या लिए हैं। ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, वे अयोध्या में जन्म लिए हैं, कौशल में राजा है, उनकी पत्नी का नाम है कौशल्या। तिनके गृह अवतरिहं जाई रघुकुल तिलक सुचारिव भाई। असल गाने वाले लोग गा सकते हैं अक्सर हमको तो ये गंतव्य स्वर में क्या तिनके गृह अवतरी हम जाए, कितना स्पष्ट है भगवान की कथा। मैं महाराज दशरथ के घर में अवतार लूंगा। आजकल ऐसे मूर्खों की कमी नहीं है जो ये कहा करते हैं कि ये दशरथ के लड़के परब्रह्म भगवान नहीं है, ये तो मनुष्य है जो अपने पत्नी के बिगड़ में वृक्षों से खोज रहे थे, ये कर रहे, ये भगवान नहीं, वो राम कोई और है, राम कोई और है, अलग निरंजन है, ये है काजी कहेंगे, पागलों का काम है, बन गए साधु और कोई ज्ञान नहीं है ऐसे बोका आदमी, ये सब क्या लिखा है। और ब्रह्म आकाशवाणी किया ना ब्रह्मा जी की सभा में जहां भगवान शिव भी है, वो बोल रहे मैं अवतार लूंगा, वही प्रभु अवतार लिए, लीला किए सीता जी को खोजने की लीला किए, आज्ञाकारी पिता पुत्र के रूप में अपने पिता की आज्ञा मानकर वन में चले गए, बहुत लीला किए, साफ सब कुछ पता चल रहा है। इतना तिनके गृह अवतरी हम जाई रघुकुल तिलक सुचारी भाई, रघुकुल में सर्वश्रेष्ठ हमारा अवतार होगा, हम चार भाई के रूप में प्रकट होंगे। तिनके गृह अवतरी हम जाई रघुकुल तिलक सुचारी भाई, नारद वचन सत्य सब करी हम परम शक्ति समेत अवतरी हूं। नारद जी ने एक बार भगवान को साथ दिया था, वो विवाह करना चाहते थे, भगवान उनका विवाह करने नहीं दिए, स्वयंवर बच्चा जा रहा था और नारद जी प्रार्थना किए कि प्रभु हमको अपना रूप दे दीजिए तब वो लड़की हमको पसंद करेगी, हमको नहीं। भगवान ने देखा कि इसको क्या हो गया है, इतने बड़े भक्त है, तो कैसा ठीक है जय सभा में आपको रूप मिल जाएगा। तो भगवान ने उनको अपना यहां से अपना स्वरूप दिया, सुंदर उनको बना दिया, लेकिन मुंह बानर का बना दिया। एक कल में ऐसे अवतार हुआ था भगवान, बानर का मुंह बन गया, गए देखते थे अपने को तो सोचते थे वो तो कन्या मुझको देखते ही बरमाला डाल दी। सब बैठे थे बड़े बड़े देवता सिंह राजा, नारद जी गए तो वरमाला लेकर जब चल रही थी सभा में पुरुषों को देख रही थी, तो नारद जी देखी तो मुख फेर करके दूसरी तरफ चली, तो नारद जी को भ्रम हुआ तो मुझको देख नहीं रही है, तो जाकर के उधर कुर्सी में बैठे, उधर बैठे वहीं पर भगवान शिव के दो पार्षद थे, पार्षद खूब हंसी मजाक कर रहे थे, लगता है देखी नहीं कन्या नहीं तो कुट कंदर सुंदर नारद जी को ही डालेगी, लोग मजाक कर रहे थे, ये कथा है। ओहो क्या इसके मन में है, देखती क्यों नहीं है, देखेगी तो आपके ही गले में बनमाला डालेगी। ये खूब बांगर का मुंह होता सब लोग हंस रहे थे, नारद जी नहीं समझते भगवान उनका हित करना चाहते थे। इसके बाद भगवान स्वयं ही राजा के वेश में गए तो कन्या ने उनको वरमाला डाला, क्योंकि उन्हीं की वो शक्ति थी, उन्हीं की वो शक्ति थी, और दुल्हन को लेकर के भगवान चल गए। नारद जी विकल हो गए और भगवान के प्रति उनकी दोष बुद्धि तब हुई जब शिव दूत में से एक दूत ने कह दिया कि नारद जी यहाँ दर्पण तो नहीं दिखाई पड़ रहा है लेकिन जड़ में अपना जरा मुख देखिए, वो देखे जब मुख तो भयंकर बानर का मुख था, तो भगवान के प्रति बहुत क्रोध हुआ। भगवान की शक्ति से कुछ भी हो सकता है भक्त की रक्षा करने के, और जा रहे थे बड़बड़ाते हुए
मैं इतनी भक्ति करता हूँ और ये हमारे साथ ऐसा किए, ये तब तक तो भगवान इसी विश्व सुंदरी कन्या के साथ मिल गए। विश्व सुंदरी नाम था उसका, उसके साथ लेकिन ये विवाह करके जा रहे हैं। नारद जी भगवान को गाली देना चालू कर रहे हैं। वहां पूछती है पार्वती जी, कह रहे ऐसा कैसे हो सकता है नारद जी? तो भगवान शिव कहते हैं कि देखो कोई ज्ञानी और मूढ़ नहीं है, भगवान जिसको जब जैसे करना चाहते ही हो जाता है। तो नारद जी लगे कहने, मैं जानता था कि तुम्हारा यही स्वभाव है, फिर भी मैं तुम पर विश्वास किया विश्वास किया, सदा के कपटी हो, सदा के कपटी हो, दैत्यों को और देवताओं को मिलाकर के समुद्र मंथन कराए और उसमें से देवताओं को सब सामान दे दिया, दैत्य बेचारे देखते ही देखते रहे, बांटने वाले तुम ही थे ना, असुर सुरा विश्व करें आप रमा मणि चार स्वार्थ साधन कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। वहां असुरों को क्या दिया गया, बेचारे मर गए, मर गए समुद्र मंथते मंथते, लेकिन उनको शराब दिया, सुरा मदिरा थी बस, असुर सुरा विष संग कर रहे और बेचारे भोले बाबा को विष पिला, तुम्हारे भोले से विष पिया है, वो नहीं मरे, भगवान की दया है लेकिन ये शिव जी को विष दिया गया, असुर सुरा विष संग कर रहे और आप रमा मणि चार, और अपने क्या लिए, अपने क्या तुमने लिया, रमा को लक्ष्मी को और कौस्तु मणि, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार, तुम सदा के कपटी हो, मथत सिंह रुद्र ही गौराय, समुद्र मंथन चल रहा था तो शिव जी को पागल बना दिया, तुमने बनाया और देवताओं को भेजा के जाओ 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 विष पी जाइए, विष पी जाए हम सुरक्षा करो, वो बेचारा किस भाव में था, वो विष पी गया, तुम पिलाए तुम पिलाए, ये किए हो किए हो, सदा से तुम दैत्यों का वध करते आए हो, गुड़ ही निकल रहा था, दैत्यों का वध करते हो और तुम्हारे जो खुशामद करता है उसके पक्ष लेते हैं, मैं इतनी भक्ति कर रहा हूं और तुम मुझे बानर का मुंह दे रहे हो, तो आज जैसे मैं इस सुंदरी के विरह में रो रहा हूं, एक दिन तुम भी रोओगे, साफ दे दिया, साफ दे दिया नारद जी, तुम भी अपने पत्नी के विरह में रोओगे और बानर की मेरी आकृति किया था ना, तुम्हारा हेल्प बानर करेंगे, ये साफ दिया था। तो इसी के भगवान कह रहे हैं, नारद वचन सत्य सब करी हूं, परम शक्ति समेत अवतरी, मैं अपनी शक्ति के क्रिया के साथ अवतार लूंगा और नारद जी की बात को सत्य करूंगा। तो भगवान रोए सीता के विरह में बहुत दिला, किसी अवतार के भगवान इतने रोए नहीं जितना वे रोए, हाँ उससे ज्यादा रोए चैतन्य महाप्रभु, वो तो अपने ही विरह में रो रहे थे और भगवान राम तो अपनी प्रिया के विरह में रो रहे थे, कृष्ण विरह में चैतन्य महाप्रभु रोए बहुत वर्ष तक रोए, भगवान श्री राम रोए बहुत रोए, वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है उनके विलाप का वर्णन है सीता जी के हरने पर 10 अध्याय में केवल विलाप का वर्णन, रो रही हरिओं सकल भूमि गरुआई निर्भय हो देव समुदाय, आप सब बिल्कुल निर्भय हो जाइए, मैं पृथ्वी का भार पूरा पूरा हर लूंगा, चिंता मत कीजिए, गगन ब्रह्म वाणी सुनिकाना तुरंत फिरे श्री हृदय जुड़ा, ये सुना सभी देवताओं ने, उनका हृदय जुड़ा गया, जुड़ा गया कि अब मान लिए कि रावण मारा गया, जब भगवान कह रहे हैं तो बात झूठी नहीं हो सकती, आकाशवाणी में भगवान ये सब कहा, तब ब्रह्मा जी समझाए सभी देवताओं को, आप धीरज रखिए, चिंता मत कीजिए, पृथ्वी को भी समझाए और ये कहे, निज लोग कहे बिरंसी के देवन यह सिखाए
बानर तन धरी धरी मही हरिपद सेवम जाए।
देवताओं को कहे तुम लोग बानर का शरीर धारण करके भगवान की चरण सेवा करो, जाओ
बानर का। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहीं विश्रामा।
देवता सब अपने धाम में गए, अपने घर गए। अब बहुत वर्षों के बाद घर गए, यही तो मेरु पर्वत की गुफा में ही निवास कर रहे।
अब भय नहीं हो रहा है, अभी रावण जीवित था लेकिन भय दूर हो गया भगवान का आश्वासन पाके। अपने घर गए और जिसको जैसे आज्ञा दिया था ब्रह्मा जी ने सब किए। ब्रह्मा जी ने कहा कि
बनचर देह धरी छिपी माई अतुलित बल प्रताप तीन पाए। तो वो लोग बनचर देह धारण किए, वन में रहने वाले बानर भालू का देश धारण किए।
भालू तो एक ही थे, हनुमान जी सब बानर ही थे। बानर और उनके पास क्या था, गिरितर मख आयुध सब, उनके पास आयुध क्या था, पहाड़ का ढोका, वृक्ष और बड़े बड़े नख, यही आयुध था। हरि मालग चित्त वही रण धीरा, सब भगवान विष्णु श्री राम का मार्ग देख रहे थे वन में, कब आएंगे कब आएंगे, क्यों नहीं भगवान वन में जाए। ये सब वीर उनकी सहायता करने के लिए भगवान को जोर रहे थे कि आएंगे आएंगे, और इधर राज्य हो जाता है जो ध्यान, तो भगवान वन में नहीं गए, तो उनकी इच्छा थी वन में जाने।
हरि मारग चित्त वही मत दिया, गिरी कानन जहता भरपूरी रहे निज निज अमी करुचि, सब कहीं कहीं वन में कहीं पर्वत में रहते थे और अपना अपना झुंड बनाकर सेना बनाकर के बानर रह गए थे। इस तरह से देवता लोग अवतार लिए भगवान के लीला में सहयोग करने के।
तो भगवान शिव कहते हैं कि अच्छा ये तो कथा में पूरा किया, जो बीच में रख दिया था उसको सुना रहा है, मतलब किस प्रकार कौशल्या आदि रानिया गर्भवती हुई, भगवान उनके उदर में आए, अब ये कथा बाद में कही जाएगी, कल जन्म भी भगवान का हो जाएगा। मेरे